आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमन है और इस ऑडियो में हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस को पढ़ेंगे। तो चलिए आप सब अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक निकालिए एंड ओपन कर लीजिए पेज नंबर 189। तो बच्चों, ऑन पेज 189 इट इज योर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेस। बच्चों, जैसा कि आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस वो मटेरियल होता है या फिर वो सब्सटेंस है जो कि हमें naturally obtain होता है, which we will get naturally from the nature। जो भी चीजें हमें nature से मिलती है उन्हें हम natural resources बोलते हैं, जैसे कि diamond, cobalt, iron, manganese, gold, silver, petroleum, these all are natural resources। इसी के साथ हमें wood मिलती है, medicines, fruits, वाटर, एयर, ये भी एक टाइप के नेचुरल रिसोर्सेस हैं और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स we know need an ambient temperature, water and food. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the earth. बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप सभी को पता है हमारे planet earth के ऊपर basically life exist करती है। यहाँ पर life form है। यहाँ पे लाइफ फॉर्म इसीलिए है बिकॉज हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर वो सारे जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। हमें वाटर चाहिए, एयर चाहिए, इन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स और इम्पोर्टेंस है और इन सब चीजों की प्रेजेंस की वजह से ही हम इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हम एनर्जी लेते हैं सन से, हम अपना फूड वगैरह इसी अर्थ से ऑब्टेन करते हैं, ये सब चीजें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर ये रिसोर्सेज क्या होते हैं तो इन्हें अब हम पढ़ेंगे। दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। तो बेसिकली तीन मेन रिसोर्सेज होते हैं। प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। दीज आर लैंड, वाटर एंड द एयर। The outer crust of the earth is called the lithosphere. बच्चों, कुछ points, important points है तो आप इन्हें साथ साथ ही underline कर लीजिए। जैसे कि the outer crust of the earth, हमारे earth की जो सबसे upper layer होती है, इस time पे जहां पर हम बैठे हैं, जिस surface के ऊपर हम चलते हैं, हम walk करते हैं, run करते हैं, ये जो surface है, this is the upper surface और outer crust of the earth, इसे हम lithosphere बोलते हैं। Water covers 75% of the earth surface. It is also found underground. इसी तरीके से हमारे earth के ऊपर पानी भी present है जो कि 75% पानी है। 25% हमारे earth के ऊपर land है, that is lithosphere, and 75% water है जिसको हम hydrosphere बोलते हैं। The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere. और वो हवा, एयर, जो हमारे अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर को कवर करती है, हमारे अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट फॉर्म करती है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। अब जहां पर भी ये तीनों चीजें प्रेजेंट है, लैंड, वाटर एंड एयर, वहां पर ही आपको लिविंग थिंग्स या फिर लाइफ फॉर्म दिखाई देगी। This life-supporting zone of the earth where the atmosphere, the hydrosphere, and the lithosphere interact and make life possible is known as the biosphere. और जिस जगह पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों मिलके जब लाइफ को सपोर्ट करते हैं, सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं कि वहां पर इजीली लिविंग बीइंग्स रह सके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर सर्वाइव कर सके, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर। द एयर, द वॉटर and the soil from the non-living or abiotic component of the biosphere. अब बच्चों, हमारे biosphere के दो अलग-अलग parts होते हैं. एक होता है biotic component और दूसरा होता है abiotic component. मैं जैसे-जैसे बोल रहा हूँ, आप साथ-साथ या तो pencil लेके book पर लिख लीजिए, या फिर अपनी notebook के ऊपर notes बना लीजिए, because this is very important. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे biosphere के दो अलग-अलग parts होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर सारे के सारे लिविंग बीइंग्स आते हैं, दैट इज लिविंग थिंग्स, जैसे कि वी, हम हो गए, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, दीज ऑल आर बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। अब वो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है ऑल आर एबायोटिक, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, तो ये सारी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो चलिए अब हम इन एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हम इनकी रियल इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में जान सकें। So the first topic of this chapter is the breath of life, that is air. We have already talked about the composition of air in the first chapter. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on Earth. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. In fact, carbon dioxide constitutes up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. बच्चों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे Earth planet के ऊपर जो atmosphere है, ये basically gases से मिलकर बना है। और ये जो gases होता है, that is air. ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा इस क्लास के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नियॉन, आर्गन और मेनी अदर इनर्ट गैसेस, ये सारी गैसेस मिलकर हमारी एयर बनाते हैं। लेकिन अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें, जैसे कि वीनस या मार्स, तो वहां पर मैक्सिमम अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट ऑन वीनस एंड मार्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर इज 95 to 97% ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, another process which result in the consumption of oxygen, and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. This includes not just human activities which burn fuels to get energy, but also forest fires. Despite this, the percentage of carbon dioxide in our atmosphere is a mere fraction of a percent, because carbon dioxide is fixed in two ways. Ab bachcho, agar hum apni baat kare, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, सेवेंथ क्लास, एट क्लास, रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट इज रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। तो अगर हम एनवायरमेंट में से सारी की सारी ऑक्सीजन इनहेल कर लेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते रहेंगे, तो बच्चों एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि हमारे पूरे एनवायरमेंट में सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ जाएगी और सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बॉडी हमारी ले चुकी है, इनहेल कर चुकी है। बट दिस इज नॉट व्हाट विल हैपन। एक्चुअली होता क्या है, हमारे इस एनवायरमेंट में हमारे अलावा और भी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके ऑपोजिट वर्क करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, फॉरेस्ट, ट्रीज। ये सारे क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और वो ऑक्सीजन जो रिलीज करेंगे उस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर लेंगे, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे उसको वो लोग इनहेल कर लेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ना तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज हमारे एयर का जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो कॉम्पोजिशन है, वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। बेसिकली इस एटमॉस्फेयर का हमारे आसपास के क्लाइमेट के कंट्रोलिंग में क्या एक्शन है। वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। वी नो दैट एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स the sudden increase in temperature during the daylight hours and during the night, it slows down the escape of heat into outer space. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हमने पढ़ा था अभी recently कि हमारे earth के आसपास एक blanket, एक covering होती है air की, जिसे हम atmosphere बोलते हैं। Basically ये atmosphere क्या है, ये heat का bad conductor है, यानी ये heat को transfer नहीं होने देता। सपोज अगर हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये इस हीट को हमारे अर्थ से दूर नहीं होने देगा, ये उसे हमारे अर्थ में ही रखेगा, जिससे हमारा अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। और अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर ठंडा है तो ये उसको ठंडा ही बना के रखेगा। इस तरीके से जो हमारा एटमोसफेयर है वो बेसिकली एवरेज टेम्परेचर बना के रखता है, ना ज्यादा ही गर्म ना ज्यादा ही ठंडा, एक स्टडी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है पूरे दिन और रात के टाइम पे और इवन पूरे साल। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रिवेंट करता है कि एकदम से टेम्परेचर में इंक्रीज ना हो जाए। स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। थिंक ऑफ द मून व्हिच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। अब अगर आप मून के बारे में सोचें, जो कि हमारे अर्थ से और हमारे सन से सेम डिस्टेंस पे है, डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विद नो एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 degrees Celsius टू 110 degrees Celsius। लेकिन जितने डिस्टेंस पे हमारा अर्थ सन से है, मून भी सन से उतनी ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी मून के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा ठंडा रहता है, जैसे कि वहां पर -190 degrees Celsius से लेके 110 degrees Celsius तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों है, वो भी तो सेम ही डिस्टेंस पर है सन से, ना वो सन की ज्यादा पास है और ना ही वो सन से ज्यादा दूर है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है जो कि टेम्परेचर को स्टेडी यानी कॉन्स्टेंट बना के रखता है, उसे चेंज नहीं होने देता ज्यादा, लेकिन मून के पास वो एटमॉस्फेयर नहीं है। Now here is the activity 14.1. Measure the temperature of the following. Take a beaker full of water, a beaker full of soil, sand and a closed bottle containing a thermometer. You have to take all these apparatus. Keep them in bright sunlight for 3 hours. आपने इन सब beakers को 3 घंटे के लिए एक अच्छी सुनहरी धूप में रख देना है. Now measure the temperature of all 3 vessels. 3 घंटे के बाद अपने तीनों वेसल्स की मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट किस चीज की, उनके टेम्परेचर की, बाय यूज ऑफ थर्मोमीटर। टेक द टेम्परेचर रीडिंग इन शेड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर आप ये जो टेम्परेचर है वो शेड में भी ले। शेड का मतलब है जहां पर धूप प्रेजेंट ना हो। और इसी के बेस्ड पे तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप इस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से रीड करके इस एक्टिविटी को आप बहुत ही इजीली अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म करने के बाद नीचे आपको 4 questions दिए गए हैं, आप इन 4 questions को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा कि एक्चुअली क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। इस एक्टिविटी को आप सॉल्व जरूर करना, ये आपका होमवर्क पार्ट है। इसके बाद है एज वी हैव सीन अबव सैंड एंड वाटर डू नॉट हीट अप एट द सेम रेट। अब जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी को रीड करा है और आप होमवर्क में इसे परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो इसके अंदर बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो सैंड और वाटर है वो इतनी जल्दी हीट नहीं होते सेम रेट पे। व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट्स ऑफ कूलिंग, कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन। सैंड और वाटर दोनों का जो गर्म होने का टाइम है, रेट है, वो अलग अलग है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। अब बच्चों हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास एक ब्लैंकेट है एयर की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एयर की मूवमेंट कैसे होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, विंड्स। ये सब चीजें आपने बच्चों जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है, दैट इज क्लास 7th। वी हैव ऑल फेल्ट द रिलीफ ब्रॉट बाय कूल इवनिंग ब्रीजेस आफ्टर अ हॉट डे एंड समटाइम्स वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड और अ टेरिबल स्टॉर्म, व्हाट ब्रिंग्स अस द वेलकम रेन्स। बच्चों जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आपने कभी देखा होगा कि अगर पूरा दिन बहुत ही ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो शाम के टाइम अगर थोड़ी सी भी ठंडी ठंडी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। कई बार क्या होता है, कई लगातार कई दिनों तक अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई रहा है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो 3 या 4 दिनों बाद क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर की वजह से वहां पर रेनफॉल होगी, बारिश जरूर होती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। बेसिकली ये जो हवा चलती है, एक्चुअली ये हवा कैसे चलती है, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ एयर, और वो कौन सी चीज है जो ये बात डिसाइड करती है कि हवा एक जेंटल ब्रीज की तरह चलेगी, तेज हवाएं चलेगी या फिर टेरिबल आंधी तूफान आएगा, ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है। ऑल दीज फिनोमेना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। बच्चों आप इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ऊपर जो भी क्वेश्चन लिखा है कि किस वजह से जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड और टेरिबल स्टर्म आता है, इसका आंसर आपको ये दे रखा है, सो प्लीज अंडरलाइन दिस। कि ये जितने भी फिनोमिनन है ये रिजल्ट है उस चेंज का जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आता है ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एयर, जहां पर एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पता है जिस दिन हॉट सनी डे होगा उस दिन धूप ज्यादा होगी, तो जितनी भी वाटर बॉडीज होती है, रिवर्स, पॉन्ड, लेक, ओशियंस, सीज, ये जितने भी वाटर बॉडीज है, यहां से धीरे धीरे वाटर का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है और इवेपोरेशन की वजह से धीरे धीरे वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और री रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। और ये जितना भी हमारा वाटर वेपर होता है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। कई बार क्या होता है, जो सन की रेस हमारे लैंड या वाटर बॉडी पे पड़ती है, ये रेस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो हवाएं चल रही है वो हवाएं भी गर्म हो जाती है। इसलिए कभी आपने सुना होगा कि गर्मियों के दौरान जो हवाएं चलती है उन्हें हम बोलते हैं लू चलना, यानी गर्म हवाएं चलना। बेसिकली इसका फिनोमिनन यही है। On being heated, convection currents are set up in the air in order to gain some understanding of the nature of convection current. Let us perform the following activity. तो बेसिकली उसके बाद एयर के अंदर एक कन्वेक्शन करंट पैदा हो जाता है। अब इसको हम डीप में पढ़ते हैं, व्हाट इज कन्वेक्शन करंट बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। प्लेस अ कैंडल इन अ बीकर और वाइड माउथेड बॉटल एंड लाइट इट, लाइट एन इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ द अबव बॉटल। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपने एक कैंडल मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती लेकर आपने एक बीकर में रख देनी है या फिर किसी भी बड़े मुंह वाले बर्तन में आप बॉटल में रख सकते हैं। कैंडल को आप जला दो, जलाने के बाद आप इसके ठीक ऊपर एक इंसेंस स्टिक जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, आप इसकी एक अगरबत्ती को लेकर आप उस बीकर के या उस कंटेनर के माउथ के ऊपर इस तरीके से जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है होल्ड करके रखिए। विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट नियर द एज ऑफ द माउथ, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट लिटिल अबव द कैंडल, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस स्टिक इज केप्ट इन अदर रीजंस। और इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। अगेन दिस इज योर होमवर्क पार्ट, यू विल have to perform this activity in your homework and answer these questions. Now, basis on this activity, the patterns revealed by the smoke show us the directions in which hot and cold air move. इस activity को करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि जितनी भी hot air है वो किस direction में flow कर रही है। In a similar manner, when air is heated by radiation from the heated land or water, it rises. But since land gets heated faster than water, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है that, but since land gets heated faster than water, इसका मतलब ये है कि जो land है, जो जमीन है, वो पानी से भी जल्दी गर्म हो जाती है. It will get heated. The air over land would also be heated faster than the air over water bodies. तो इसी की वजह से land के ऊपर जो air होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है as compared to air above the water bodies. So, if we look at the situation in coastal regions during the day, the air above the land gets heated faster and starts rising. इसीलिए अगर हम coastal regions की बात करें तो वहां पर land के ऊपर जो air होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और सी के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर जो ठंडी हवाएं होती है वो उसकी जगह ले लेती है और इसीलिए लैंड के पास जो एरिया है वो ठंडक भरा रहता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड ड्यूरिंग द डे, द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड। और ऐसे ही दिन के टाइम जो हवाएं हैं वो समुद्र से लेकर लैंड की दिशा में ट्रैवल करती है और मूव करती है। जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये ब्रीज होती है अलग अलग तरह की, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। एट नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, और रात के समय दोनों ही जगह पर कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, अगेन जो पानी है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। The air above water would be warmer, और पानी के ऊपर जो एयर है वो गर्म होती है, अब वो ऊपर राइज करेगी तो लैंड के पास जो ठंडी एयर है वो सी की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है और इस तरीके से एयर मूव करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एयर। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेन। लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रिंग अस रेन। We could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factor influencing these climatic changes. Again, an activity which will be your homework part. तो बच्चों, इस टॉपिक में हम बेसिकली रेन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेन का प्रोसेस पूरा होता है। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. जब दिन के दौरान एक हॉट और सनी डे होता है, धूप वाटर बॉडीज के ऊपर पड़ती है, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट विल गोस इनटू द फॉर्म ऑफ एयर। अब कुछ अमाउंट में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से आसपास की जो एयर है वो भी हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। अभी जितनी भी गर्म हवाएं ये सारी की सारी क्या होती है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि गर्म हवा लाइट होती है वेट में। नाउ एज द एयर राइजेस इट एक्सपैंड्स एंड कूल्स, अभी हवा ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड होती है, फैलती है और कूल हो जाती है, यानी ठंडा टेम्परेचर हो जाता है इसका। दिस कूलिंग कॉजेज द वॉटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जैसे ये वॉटर वेपर ऊपर जाते जाते कूल होते हैं तो क्या होगा, कूलिंग की वजह से इनकी कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वॉटर वेपर इंटू लिक्विड स्टेट, दैट इज टाइनी टाइनी वॉटर ड्रॉपलेट्स, जो भी टाइनी वॉटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कंडेंसेशन ऑफ वॉटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। Normally, dust and other suspended particles in the air perform this function. Basically, हवा में जो dust particles होते हैं, ये particle उस पानी की droplet का nucleus बन जाते हैं, that is central part. और इस छोटे छोटे जो dust particles हैं, जो पानी की बूंदी है, जो हमारी बारिश की बूंदी होती है, वो इन dust particles के साथ चिपक के फिर ये नीचे की तरफ गिरना start होती है और इसी तरीके से rain हो जाती है। Normally, once the water droplets are formed, they grow bigger by the condensation of these water droplets. When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of rain. Sometimes when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of snow, sleet or hail. Kai baar kya hota hai? Jab hamari air ka temperature bahut hi zyada kam hota hai, thanda hota hai, to usme kya hoga? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस की वजह से वो धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे स्नोफॉल हो जाएगी, ऐसी स्नोफॉल होती है। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रूट बाय द साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनस। वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट्स दैट से डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन्स इन सम एरियाज। यू कैन सी इन फिगर 14.2। बेसिकली रेन का आना किस बात पर डिपेंड करता है, वो सिर्फ विंड पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हवाएं का रुख क्या है, हवाएं किस डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है, किस डायरेक्शंस में चल रही है, इसी बेसिस पर हमें पता लगता है कि बारिश होनी है या बारिश नहीं होनी। तो बेसिकली ये सारा का सारा वही कंसेप्ट है। तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर दो एक्टिविटीज है, 14.4 एंड 14.5। बेसिकली इन एक्टिविटीज में यही लिखा है कि आपने रेनफॉल पैटर्न के बारे में, साइक्लोन्स और मॉनसून्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको स्टडी करना है। इसी के साथ आपने न्यूज़पेपर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है वेदर रिपोर्ट्स की, जैसे टेलीविजन के ऊपर या फिर आपके न्यूज़पेपर्स के ऊपर डेली बेसिस पे वेदर रिपोर्ट्स आती है जिसमें आपका टेम्परेचर, आपका रेनफॉल, विंड, कितना मिनिमम टेम्परेचर है और कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। सो यू हैव टू कलेक्ट दिस डेटा एंड परफॉर्म दीज बोथ एक्टिविटीज विच विल बी अगेन योर होमवर्क पार्ट। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, आपका होमवर्क है आपने इस चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इसी के साथ जितनी भी एक्टिविटीज है इस चैप्टर में, दैट इज फ्रॉम 14.1 टिल 14.5, जहां तक हमने इस ऑडियो में कवर करा है, ये सारी एक्टिविटीज आपने होमवर्क पार्ट पे रीडिंग करनी है और इनके अंदर जो भी क्वेश्चनिंग है वो आपने आंसर करना है, विच विल बी योर होमवर्क पार्ट। तो बच्चों इस ऑडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।